ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सभा के 17 सदस्य पदों के लिए कल होगा मतदान। फागुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के उम्मीदवारों के वैयक्तिक विवरण निर्वाचन आयोग ने किए सार्वजनिक। देश के पश्चिमी हिस्से के उच्च पहाड़ी और हिमालयी जिलों में हुए बारिश और हिमपात से जनजीवन है प्रभावित और अफगानिस्तान में भारी हिमपात के कारण 61 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सभा के 17 सदस्य पदों के लिए कल चुनाव होने जा रहा है। चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने बताया कि कल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। बता दें कि राष्ट्रीय सभा के रिक्त 18 सदस्यों में से एक पर नेपाली कांग्रेस के सुनील बहादुर थापा निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। कल 17 सदस्यों के लिए सभी 7 प्रदेशों की राजधानियों में मतदान होंगे। ज्ञात हो कि कानूनी व्यवस्था के मुताबिक राष्ट्रीय सभा चुनाव में प्रदेश सभा सदस्य स्थानीय तहों के प्रमुख उपप्रमुख और अध्यक्ष उपाध्यक्ष मतदान करते हैं। निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों के वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक किए हैं। प्रतिनिधि सभा चुनाव निर्देशिका 2082 की दफा 22(1) अनुसूची 10 के तहत उम्मीदवारों द्वारा उम्मीदवारी पंजीकरण के साथ ही पेश किए गए वैयक्तिक विवरण को उसी दफा की उपदफा 3 के तहत सार्वजनिक किया गया है। ये बात आयोग के प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराय ने बताई। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाने के लिए उम्मीदवारों के वैयक्तिक विवरण साझा करना आवश्यक होता है, इसलिए आयोग ने अपने वेबसाइट के जरिए सार्वजनिक किया है। आगामी फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली अंतर्गत 3,406 उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्धा होने वाली है। कल प्रत्यक्ष उम्मीदवारों की अंतिम नामावली प्रकाशित कर निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह भी दे दिए। आयोग के मुताबिक उम्मीदवारों में 3,017 पुरुष, 388 महिलाएं और एक अन्य शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि उम्मीदवारी पंजीकरण से लेकर वापस लेने तक चुनावी कार्यक्रम शांति और उत्साह के साथ संपन्न हुआ है। देश के पश्चिमी हिस्से के उच्च पहाड़ी और हिमालयी जिलों में हुए बारिश और हिमपात से जनजीवन प्रभावित बना हुआ है। कल रात से ही बैतड़ी सहित बाजुरा, दारचुला, बछांग, डोटी, डडेलधुरा लगायत के ऊंचे हिस्सों में बारिश के साथ ही हिमपात भी हुआ। हालांकि पिछले 4 महीनों से बारिश न होने से सूख रहे सर्दी की फसलों में हुई सिंचाई को लेकर यहां के किसान काफी खुश हैं। वहीं कर्णाली प्रदेश के हिमालयी जिलों में इस साल का पहला हिमपात हुआ है। बीती रात से ही कर्णाली के जुमला समेत मुगु, हुमला और डोल्पा लगायत जिलों में हिमपात के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। इसके अलावा रुकुमपुर और ऊपरी मुस्तांग में भी हिमपात के कारण जनजीवन कष्टकर बना हुआ है। हिमपात के बाद ठंड काफी बढ़ जाने के कारण कर्णाली का जनजीवन कष्टपूर्ण है, लेकिन इसके बावजूद यहां के किसान भी फसलों में हुए लाभ को लेकर उत्साहित हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवारों के विरुद्ध उम्मीदवारी देने वालों और उन्हें समर्थन देने वालों समेत 7 नेताओं पर कार्रवाई की है। पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और सह संयोजक माधव कुमार नेपाल द्वारा आज जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में इस बात का उल्लेख है। नेकपा ने सिंधुली के नेता हरिबोल गजुरेल और महेश्वर दाहाल, दांग के कुलप्रसाद केसी, उदयपुर के मेजर राय, सिराह के धर्मनाथ शाह, राजकुमारी शाह और जीवत शाह को निष्कासित किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा ने कहा कि मधेश को जोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए उन्होंने मधेश से उम्मीदवारी दी है। आज काठमांडू में आयोजित सरलाही चार के मतदाताओं के साथ विमर्श में सभापति थापा ने कहा कि वे मधेश नहीं आएंगे तो कांग्रेस बड़ी पार्टी नहीं बनेगी और इसी समझ के कारण उन्होंने सरलाही क्षेत्र नंबर 4 से उम्मीदवारी दी है। विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों में जीवन बलिदान कर गए शहीदों की याद में आज से शहीद सप्ताह शुरू हुआ है। विक्रम संवत 1997 माघ 10 कते को शुक्रराज शास्त्री ने देश में प्रजातंत्र स्थापना के लिए टेकू के पचली में अपना जीवन बलिदान किया था। शहीद सप्ताह के पहले दिन आज शुक्रराज शास्त्री द्वारा प्राण उत्सर्ग किए गए स्थान टेकू में स्मृति सभा आयोजित की गई। वहां पहुंचकर काठमांडू महानगर पालिका की कार्यवाहक प्रमुख सुनीता डंगोल सहित महानगर पालिका के पदाधिकारियों और स्थानीय व्यक्तित्वों ने शहीद शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पगुच्छा चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान में बीते 3 दिनों से हो रही भारी बर्फबारी और तेज बारिश के कारण अब तक 61 लोगों की मौत हो चुकी है और 110 लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ANDMA ने आज ये जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार ये मौतें बुधवार से शुक्रवार के बीच देश के मध्य और उत्तरी प्रांतों में हुई हैं। मौसम की मार से 458 घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस आपदा से 360 परिवार प्रभावित हुए हैं। ANDMA के एक प्रवक्ता ने लोगों से अपील की है कि वे बर्फ से ढकी सड़कों पर बिना जरूरत यात्रा न करें। अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर मौतें घरों की छत गिरने और हिमस्खलन के कारण हुई हैं। कई लोग शून्य से नीचे तापमान में ठंड लगने से भी मारे गए। दक्षिणी प्रांत कंधार में एक घर की छत गिरने से 6 बच्चों की मौत हो गई। यह हादसा तेज हवा और भारी बारिश के कारण हुआ। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सभा के 17 सदस्य पदों के लिए कल होगा मतदान। फागुन 21 गते होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनाव के उम्मीदवारों के वैयक्तिक विवरण निर्वाचन आयोग ने किया सार्वजनिक। देश के पश्चिमी हिस्से के उच्च पहाड़ी और हिमालयी जिलों में हुए बारिश और हिमपात से जनजीवन है प्रभावित और अफगानिस्तान में भारी हिमपात के कारण 61 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।